पृष्ठ संख्या 704। भारतीय साहित्य में प्रचलित कुछ प्रमुख काव्य रूढ़ियां अकारादि क्रम से। अप्सरा, परम रूपवती देवांगना। काव्य रूढ़ी के अनुसार अप्सराओं का स्थान इंद्रलोक कहा जाता है। एक, इंद्र की सभा में अप्सराओं का नृत्य और गायन सतत आह्लाद का साधन है। हिंदी सूफी कवियों ने अप्सरा के लिए अक्षर, अक्षरी, अप्सरा, आछरी आदि शब्दों का प्रयोग किया है। उदाहरण क, करण कहउ और लखन बिसेखी, अक्षर रूप सो तिरिया देखी। दो, ख, चोला चीर पहिर जो चाली, जानो जाई उड़ाई, देखत रूप बिमोहे देवता, कितहुत अक्षरी आई। तीन, ग, रोवहि इंद्र अक्षरा और बासुकी पतार, रोवहि हस्ती और घोरा, ठाड़े रोवहि अबर पुकार। चार, एक, असल में यक्ष और यक्षिणी और गंधर्व और अप्सरा एकार्थवाचक देवता हैं। शुरू में ये कुबेर के अनुचर माने जाते थे, पर जब हिंदू धर्म में इस प्रकार की प्रवृत्ति आई कि आर्येतर देवताओं में जो उत्तम है वह इंद्र के पास होना चाहिए, तो गंधर्व और अप्सरा तो इंद्र के अनुचर हो गए और साधारण अर्थवाचक यक्ष और यक्षिणी कुबेर के अनुचर माने जाते रहे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, बम्बई, सन 1954 ईस्वी, पृष्ठ 261। दो, मौलाना दाऊद दलमई कृत चंदायन, संपादक श्री परमेश्वरी लाल गुप्त, दिल्ली, सन 1964 ईस्वी, पृष्ठ 116। तीन, वही, पृष्ठ 128। चार, कुतबन कृत मृगावती, संपादक डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र प्रयाग, शक 1885 ईस्वी, पृष्ठ 200। पृष्ठ संख्या 705। घ, सेव करही दासी चहु पासा, अछरी जानु इंद्र कबिलासा। एक, अंग, कंचन कलश नीर भरी घरा, इंद्र पास आनी अप्सरा। दो, च, आज इंद्र आछरी सौ सौ मिला, सब कविलास होई सोहिला। तीन, छ, कहिनी कि यह मानुष हम अछरी, और न हमरे काज, पै यह लखिय बरही बर, कामिनी उदय अस्त जेत राज। चार, ज, तिन्ह मह एक रूप गुण आगरी, परगट भागी लीलार, तेहि कोनिया एक कन्या, आछरी कै अवतार। पाँच, फारसी साहित्य में स्वर्गांगना के लिए हूर शब्द का व्यवहार किया जाता है। प्रसिद्धि है कि हूरें बिहिश्तियों स्वर्ग के वासियों की सेवा शुश्रूषा में होंगी। ख्वाजा हाफिज कहते हैं, जाहिद अगर बहुरो कुसुरस्त उम्मीदवार, मारा शराब खाना कुसुरस्तो यार हूर। छे, अर्थात यदि जाहिद संयमी हूर और बेहिश्त स्वर्ग के प्रासादों की आशा रखता है तो रखने दो, हमारे लिए इस संसार ही में शराब खाना और मकान है तथा हमारा प्रिय ही हूर है। अमृत, प्रसिद्धि है कि स्वाति बिंदु सुमेरु पर्वत पर पड़कर अमृत बन जाती है। एक, जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 353। दो, वही पृष्ठ 126। तीन, जायसी ग्रंथावली पद्मावत 122। चार, मंझन कृत मधुमालती संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1961 ईस्वी पृष्ठ 56। पाँच, वही पृष्ठ 209। छः, दीवाने हाफिज मदबाए मजीदी कानपुर पृष्ठ 222। पृष्ठ संख्या 706। उदाहरण, जोगिन बहुते छंद ओराही, बूंद सेवाती ही जैस पराही, परे मेरु पर अमृत होई, परे नाग मुख बिख होई सोई। एक, आभरण, आभरणों की संख्या 12 मानी जाती हैं। वे ये हैं, नूपुर, किंकिणी, वलय, अंगूठी, कंकण, अंगद, हार, कंठश्री, बेसर खूंट या बिरिया, टीका तथा सीस फूल। उदाहरण क, मृगावती सिंगार जो ठये, बारह अभरण पहिरिसि नये। दो, ख, वह रानी जहवा सुख राजु, बारह अभरण करे सुसाजु। तीन, कवि समय के अनुसार श्रृंगारों की संख्या 16 मानी जाती है। चार, इसलिए 12 आभूषणों तथा 16 श्रृंगारों के लिए 12-16 मुहावरा चल पड़ा, यथा क उस 12-16 धनी साजे। 5 कवि उस्मान भी चित्रावली में लिखते हैं ख 12-16 साज बनाए। 6-1 पद्मावत संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1963 ईस्वी पृष्ठ 263। 2 कुतुबन कृत मृगावती संपादक डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र प्रयाग शक 1885 ईस्वी पृष्ठ 132। 3 जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 130। 4 देखिए 16 श्रृंगार श्रृंगार। 5 जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 132। 6 कवि उस्मान चित्रावली काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी 403 2 पृष्ठ संख्या 707। इंद्र का अखाड़ा। काव्य रूढ़ी के अनुसार इंद्र का अखाड़ा उस स्थान को कहते हैं जहां नाचने गाने वाली सुंदरियां एकत्रित हों। प्रसिद्धि है कि स्वर्गपति इंद्र की सजी हुई सभा में इसके सामने अप्सराएं नाचती हैं। इसी के आधार पर साहित्य में एक मुहावरा इंद्र का अखाड़ा होना एक प्रचलित है, जिसका अर्थ है बहुत सजी हुई सभा होना जिसमें खूब नाच रंग होता हो। उदाहरण क क्षुद्र घंटिका मोह ही राजा इंद्र अखाड़ आई जनु बाजा। 2 ख नट नाटक पातुरी औ बाजा आई अखाड़ माह सब साजा। 3 एरावत। ईरा अर्थात जल से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम एरावत था। यह हाथी समुद्र मंथन के उपरांत निकले 14 रत्नों में से एक था। यह इंद्र को दिया गया था। एरावत उनका प्रधान वाहन है। इसका रंग श्वेत कहा गया है तथा इसके दांत संख्या में 4 कहे गए हैं। यह पूर्व दिशा का दिग्गज भी है। इसके अन्य पर्याय हैं अभ्रमातंग एरावण अभ्रभ्रुवल्लभ श्वेतहस्ती मल्लनाग इंद्रकुंजर हस्तिमल्ल सदादान सुदामा श्वेतकुंजर गजाग्रणी नागमल्ल तथा इंद्रहस्ती। एरावत का उल्लेख करते हुए मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं ख गंधर्व सेन सुगंध नरेसु सो राजा वह ताकर देसु 7 सहस्र हस्ति सिंघली जनु कबिलास एरावत बली। 4 1 हिंदी मुहावरा कोश संपादक डॉ. भोलानाथ तिवारी इलाहाबाद सन 1964 ईस्वी पृष्ठ 54। 2 जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 47। 3 वही पृष्ठ 251। 4 जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 10 पृष्ठ संख्या 708। ख इंद्र आई तिन खंडन छावा चढ़ी सब कटक घोर दौरावा जही पथ चल एरावत हाथी अबहू सो डगर गगन मह आथी। 1 कबिलास कैलाश एक पर्वत श्रृंग जहां शिव तथा कुबेर रहते हैं। हिंदी सूफी कवियों ने कबिलास शब्द का प्रयोग स्वर्ग के अर्थ में किया है। श्री वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार कैलाश का ठेठ अवधि रूप कबिलास कैलाश कैलाश कविलास वकार का प्रश्लेष कविलास है। 2 सूफी कवि नूर मोहम्मद ने कैलाश का भी प्रयोग किया है। इस शब्द का प्रयोग सूफी कवियों के लिए काव्य रूढ़ी सा हो गया था। उदाहरण क सिरजसी धरती और अकाशु सिरजसी मेरु मंदर कबिलासु। 3 ख कीन्हेसी प्रथम ज्योति परगासु कीन्हेसी तेही प्रीत कैलाप कबिलासु। 4 ग भानिसी माह दिन क परगासु सब उजियार भयो कबिलासु। 5 घ औ तेही धुनी मो करुबासा ताही ज्योति भीतर कबिलासा। 6 अंग ना वह मंदिर नहीं कबिलासु न वह चित्र न वह सुखवासु। 7 1 वही पृष्ठ 226। 2 पद्मावत संपादक श्री वासुदेव शरण अग्रवाल चिरगांव संवत 2012 विक्रम पृष्ठ 2 टिप्पणी 2। 3 मौलाना दाऊद दलमई कृत चंदायन संपादक परमेश्वरी लाल गुप्त दिल्ली सन 1964 ईस्वी पृष्ठ 81। 4 पद्मावत संपादक डॉ. माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1963 ईस्वी पृष्ठ 1। 5 वही पृष्ठ 44। 6 मंझन कृत मधुमालती संपादक डॉ. माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1961 ईस्वी पृष्ठ 27। 7 उस्मान चित्रावली, काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी, सन 1912 ईस्वी, पृष्ठ 35, पृष्ठ संख्या 709। च हौ जोगी तेहि पंथ को नहीं चाहो कविलास, चाहो दर्शन मिच्छा राखत हौ नित आस। एक छ वह सुखवास महिम को है उत्तम कहलास, सुख जीवन तामो मिले पूजन मन की आस। दो कचूर प्रसिद्धि है कि स्वाति बुंद पृथ्वी पर पड़कर कचूर काली हल्दी बन जाती है। उदाहरण जोगिन बहुते छंद ओराही, बूंद सेवाती ही जैस पराही, पर पुहमि पर होई कचूरु, पर केदली मह होई कपूरु। तीन कर्ण कर्ण कुंती के गर्भ से सूर्य के औरस पुत्र थे। प्रसिद्धि के अनुसार दान देने में कर्ण अग्रणी माने जाते रहे हैं और उनका नाम आदर से दानवीर कर्ण के रूप में लिया जाता है। कर्ण तथा अर्जुन के बीच सदा प्रतिद्वंदिता रहती थी। अर्जुन के यथार्थ पिता इंद्र ने अर्जुन की तुलना में उन्हें कमजोर बनाने के लिए उनकी दानशीलता का लाभ उठाते हुए उनके सहजात कवच तथा कुंडल जो उनके शरीर से लगे थे मांगे। कर्ण ने उन्हें प्रसन्नता पूर्वक दे दिया। कहते हैं कि उन्हें शरीर से अलग करते समय खून निकलने लगा था। हिंदी सूफी कवियों ने कर्ण की दानशीलता का उल्लेख किया है। एक इंद्रावती काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी सन 1906 पृष्ठ 45। दो वही पृष्ठ 15। तीन पद्मावत संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1963 ईस्वी पृष्ठ 263। कुछ उदाहरण पृष्ठ संख्या 710। क दान देय बहुगणत न आवे, बलि औ करण न सर्वरी पावे। एक ख बलि विक्रम दानी बड़ कहे, हातिम करण त्यागी अहे। शेर साहि सारे पूज न कोउ, समुद सुमेर भंडारी दोउ। दो ग हातिम करण दिया जो सीखा, दिया रहा धर्मन मह लिखा। तीन घ दान निशान सरग गय बाजे, हेतिम करण भोज बलि लाजे। चार कर्पूर प्रसिद्धि है कि स्वाति बूंद कदली में पड़कर कर्पूर बन जाती है। उदाहरण जोगिन बहुते छंद ओराही, बूंद सेवाती ही जैस पराही, पर पुहमि पर होई कचूरु, पर केदली मह होई कपूरु। पांच कामदेव धनुष और बाण कवि समय के अनुसार कामदेव के धनुष और बाण पुष्पमय हैं। कामदेव के पुष्पमय पांच बाणों में अरविंद, कमल, अशोक, आम, नवमल्लिका और नीलोत्पल हैं। किसी किसी के मत से द्रावण, शोषण, तापन, मोहन और उन्मादन या सम्मोहन, समुद्वेग बीज, स्तंभन कारण, उन्मादन, ज्वलन और चेतना हरण ये काम बाण हैं। एक कुतवन कृत मृगावती संपादक डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र प्रयाग सक 1885 पृष्ठ 68। दो जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 7। तीन वही पृष्ठ 61। चार मंजन कृत मधुमालती संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1961 ईस्वी पृष्ठ 12। पाँच पद्मावत संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1963 ईस्वी पृष्ठ 263। या सम्मोहन, उन्मादन, शोषण, तापन और स्तंभन ये ही काम बाण हैं। पृष्ठ संख्या 711। एक और मत एक यह है कि पांच इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये ही पांच कामदेव के बाण हैं। दो शेख निसार कृत यूसुफ जुलेखा के षड ऋतु खंड में से एक उदाहरण देखिए। ऋतु बसंत बन आदिन फूला, जोगी जति देखी रंग भूला, पूरन काम कमान चढ़ावा, बिरही हिये बान असलावा। तीन कवि जायसी लिखते हैं पंचम बिरह पंच सर मारे, रकत रोई सगरों बन ढारे। चार तथा देव लोक देखत मुए ठाड़े, लागे बान हिय जाही न काढ़े। पांच कुंभकर्ण छ की खोपड़ी प्रसिद्धि है कि भीमसेन सात को अपने बल का गर्व हो गया था। एक बार वे चलते हुए ठोकर खाकर गड्ढे में गिर पड़े और डूबने लगे। बड़ी कठिनाई से वे उसमें से निकल सके। वह गड्ढा कुंभकर्ण की खोपड़ी में जल भरने से बना था, यह जानकर भीमसेन का अभिमान जाता रहा। एक, काव्य मीमांसा अध्याय 16। दो, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, बम्बई, सन 1954 ईस्वी, पृष्ठ 237। तीन, शेख निसार, यूसुफ जुलेखा, षड ऋतु खंड, छंद एक। चार, जायसी ग्रंथावली पद्मावत, पृष्ठ 155। पाँच, वही पृष्ठ 196। छः, रावण का शक्तिशाली सहोदर भाई, प्रसिद्धि है कि वह 6 महीने सोता था और केवल एक दिन के लिए भोजनार्थ उठता था। सात, पांडु और कुंती के पुत्र, ये अपनी बलिष्ठता के लिए प्रसिद्ध हैं। शैशवावस्था में ही एक बार ये अपनी माता की गोद से गिर पड़े, फलतः इनके नीचे का पत्थर चूर चूर हो गया। भीम ने एक बार 7 हाथियों को उठाकर आकाश में फेंक दिया था। कहा जाता है कि आज तक वे हाथी ऊपर ही हैं। श्री भोलानाथ तिवारी, हिंदी साहित्य की अंतर कथाएं, इलाहाबाद, सन 1953 ईस्वी, पृष्ठ 110, पृष्ठ संख्या 712। इसी प्रसिद्धि के आधार पर कवि जायसी लिखते हैं, भोला भांट नरेश सुनु, गर्भ न छाजा जियु, कुंभकरण के खोपरी, बूढ़त बाँचा भीयू। एक, कुमुद तथा पद्म, कमल। एक, कवि समय के अनुसार कुमुद शशि के समक्ष खिलता है और कमल सूर्य के सम्मुख अपना संपुट खोल देता है। कुमुद के विकसित होने के संबंध में कवि कुतुबन कहते हैं, ज्यों शशि देखी कुमुद बिगसाई, पावस चंद चकोर मिलाई। दो, पद्म, कमल के दिन में खिलने के विषय में कवि जायसी लिखते हैं, कमल पत्र दारिम तोरी चोली, देखसी सूर देसी हंसी खोली। तीन, कवि जायसी ने कुमुद और कमल के विकसित होने का उल्लेख एक ही अर्धाली में कितनी सुंदर रीति से किया है। बिगसै कुमुद कहे शशि ठाऊ, बिगसै कमल सुने रवि नाऊ। चार, कवि का यह चित्र इस प्रकार है, पद्मावती के दो रूप हैं, शशि रूप और कमल रूप। सरोवर में कुमुद खिले हैं, उसी के पास कमल उगा हुआ है। कुमुद, सखियां, शशि पद्मावती के दर्शन से विकसित हो गए, किंतु उनका साथी कमल विकसित नहीं हुआ। जब उन्होंने शाह रूप सूर्य के प्रताप का वर्णन किया तो उसका नाम सुनते ही सरोवर का कमल, पद्मावती का कमल रूप हर्षित हो गया। भाव यही है कि सखियां पद्मावती को देखकर प्रसन्न हुई और पद्मावती शाह के आने की बात जानकर प्रसन्न हुई। उसने सरल स्वभाव और विश्रब्द भाव से शाह को देखना स्वीकार कर लिया। एक, जायसी ग्रंथावली पद्मावत, पृष्ठ 114। दो, कुतुबन कृत मृगावती, संपादक डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र प्रयाग, शक 1885, पृष्ठ 79। तीन, जायसी ग्रंथावली पद्मावत, पृष्ठ 194। चार, वही पृष्ठ 256, पृष्ठ संख्या 713। दो, कुमुद एवं पद्म का वर्णन सर्वत्र जलाशयों में करना भी कवि समय है। कवि नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती के नहान खंड में से एक सुंदर उदाहरण देखिए, अब जूरा इंद्रावती छोरा, भयव घटामो चांद अजूरा, पैठी हु जब जल भीतर रानी, पानी अपायव तारा पानी, झुलना झूले हु करत नहानु, लह की चहेव चुंबे अधिरानु, लखी नथ मोथी मोती की अमलाई, शुक्र छपाना आप ल जाई, मनु तारा भा गगन समानु, भयव मयंक समावर प्राणु, सूरज उआ आकाश ही, चंदा उआ जलमाह, कुमुद तामरस एक फूले, दो मित्र के पाह। दो, कूर्म, एक कूर्म जो पाताल 3 से भी नीचे है, इसकी पीठ पर सर्पराज शेष स्थित हैं और इनके फनों पर पृथ्वी टिकी हुई है। चार, उदाहरण, क, धरती भार न अगवे, पांव धरत उठ हाली, कुरुम टूटे भुई फाटे, तीन हस्तिन के चाली। पांच, एक, कमल। दो, कवि नूर मोहम्मद इंद्रावती, काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी, पृष्ठ 90। तीन, पुराणों के अनुसार पृथ्वी के नीचे के 7 लोक, 7 पातालों में अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल और पाताल के नाम लिए जाते हैं। 7वें पाताल के 30,000 योजन नीचे शेष भगवान रहते हैं। भोलानाथ तिवारी, हिंदी साहित्य की अंतर कथाएं, इलाहाबाद, सन 1953 ईस्वी, पृष्ठ 98। चार, मुसलमानों के अनुसार एक मछली की पीठ पर बैल खड़ा है, उसके सींग पर पृथ्वी स्थित है। फारसी सूफी कवियों ने इसी मत को अपनाया है। पांच, जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 17, पृष्ठ संख्या 714। ख, जनु भूई चाल चलत मही परा, टूटी कमठ पीठ ही डरा। एक, ग, मेह डरे बिजुरी जेही दीठी, कुरुम डरे धरती जेही पीठी। दो, कोकिल, कवि समय है कि कोकिल केवल बसंत ही में बोलते हैं। तीन, कोकिल को कवियों ने बसंत और मदन दोनों का साधन वर्णन किया है। चार, एक, वही पृष्ठ 104, दो, वही पृष्ठ 114। तीन, वसंत के बाद भी ग्रीष्म तथा पावस में उसका कूकना जारी रहता है। किसी कवि का यह कथन अब तो दादुर बोली है भय कोकिला मौन गलत है, क्योंकि वर्षा काल में भी वह पूरे जोशो खरोश के साथ गाती रहती है और तब तक गाती है जब तक कि शीतकाल का आरंभ नहीं हो जाता तथा अंतरिक्ष में पहाड़ी झीलों से आए हुए जल पक्षी अपने कूजन से आकाश को भरना नहीं शुरू कर देते। गरज यह कि साल में 4 महीने से अधिक वह चुप नहीं रहती। कहते हैं कि जाड़ों में वह दक्षिण की ओर जहाँ ठंडक नाम मात्र को पड़ती है चली जाती है। मुमकिन है कि इनमें से कुछ चली जाती हों, पर अवश्य ही सभी नहीं जाती, क्योंकि शिशिर और हेमंत में भी बहुधा कोयल को बोलते सुना गया है। हाँ, सर्दियों से इसे नफरत जरूर है और यही वजह है कि पहाड़ों की ओर यह कभी भूल कर भी नहीं जाती। श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह, भारत के पक्षी, दिल्ली, सन 1958 ईस्वी, पृष्ठ 39। चार, क, ऋतु संहार 6। ख, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, बंबई, सन 1954 ईस्वी, पृष्ठ 241। ग, कामदेव का साथी बसंत और वाहन कोकिल है, श्री भोलानाथ तिवारी, हिंदी साहित्य की अंतर कथाएं, इलाहाबाद, सन 1953 ईस्वी, पृष्ठ 35। पृष्ठ संख्या 715। कवि जैसी लिखते हैं कि चैत में बसंत का उत्सव हो रहा है, परंतु कोयल पंचम स्वर से विरह में कामदेव के 5 बाण मार रही है। पंचम विरह पंच सर मारे, रक्त रोई सगरों बन ढारे। एक, मारे और ढारे इन दो क्रियाओं का कर्ता कोयल है जो अनुरक्त है, किंतु संकेत से स्पष्ट है। कोयल के नेत्र रक्त की बूंद के समान लाल होते हैं। खारा जल, प्रसिद्धि है कि स्वाति बूंद समुद्र में पड़कर खारा जल बन जाता है। उदाहरण, जोगिन बहुते छंद ओराही, बूंद सेवाती ही जैस पराही। परे समुद्र खार जल ओही, परे सीप मह मोती होही। दो, गरुड़, तीन, प्रसिद्धि है कि गरुड़ जी अपने पंखों पर स्वर्ग से अमृत का घट रख कर लाए थे। अमृत की कुछ बूंदे उनके पंखों में लग गई थी और उनके पंख झाड़ने से अमृत झड़ता था। इसकी ओर संकेत करते हुए मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत के राजागढ़ 6 का खंड में लिखा है, राजा इहां एस तप झूरा, भा जरी बिरह छार कर कूरा। एक, जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 155। दो, पद्मावत संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, इलाहाबाद, सन 1963 ईस्वी, पृष्ठ 263। तीन, गरुड़ बड़ा बहादुर पक्षी है, अपनी तेज गति तथा बहादुरी के कारण ही उसे भगवान विष्णु का वाहन बनने का सौभाग्य प्राप्त है। पृष्ठ संख्या 716। मूरी सजीवन आनिकै, अमुख मेला नीर, गरुड़ पंख जस झारे, अमृत बरसा कीर। एक, चंदन, प्रसिद्धि है कि चंदन केवल मलय पर्वत पर ही होता है। इस कवि प्रसिद्धि के आधार पर कवि कुतुबन लिखते हैं, मृगावती सिंगार जुठय, 12 अभरन पहिरिसि नय, धौरा हर बहु भाति सवारा, रतन मणि दीपक उजियारा, अगर चंदन बेना कस्तूरी, मलया गिरी जो कचोरन भरी, कुंकुह मेद अगरजा किया, ठाव ठाव बरह खर तेलिया। दो, कवि जैसी एवं मंजन इस कवि प्रशस्ति का उल्लेख अप्रत्यक्ष रूप से करते हुए कहते हैं, थल थल नग न हो ही जेही ज्योति, जल जल सीप न उपनहि मोती, बन बन बिरिछ न चंदन होई, तन तन बिरह न उपाजय सोई। तीन, रतन की सायर सायर ही, गज मुकुता गज कोई, चंदन की बन बन उपनय, बिरह कितन तन होई। 4। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की सम्मति है कि इस कवि प्रसिद्धि का मूल शायद यह हो कि मलय पर्वत पर ही यह बहुतायत से होता है। 5। 1। जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 101। 2। कुतुबन कृत मृगावती संपादक डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र प्रयाग शक 1885 पृष्ठ 132। 3। जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 136। 4। मंझन कृत मधुमालती संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1961 ईस्वी पृष्ठ 196। 5। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका बम्बई सन 1954 ईस्वी पृष्ठ 244। चंद्र और राहु। प्रसिद्धि है कि चंद्रमा राहु का ऋणी है और वह ऋण उस पर शेष है पृष्ठ संख्या 517। इसलिए उसे उगाहने के लिए राहु चंद्रमा को बंदी किया करता है। इसके आधार पर कवि जायसी लिखते हैं, तहां भवर ज्यों कवला गंधी भय शशि राहु केरी ऋणी बंधी। 1। अर्थात रत्नसेन कहता है कि अब सुवासित उस कमलिनी पद्मावती के वश में मेरा जीव भ्रमर उसी प्रकार हो रहा है जैसे राहु के ऋण के कारण शशि उसके बंधन में पड़ा। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार चंद्रमा और राहु के बीच कभी न छूटने वाला संबंध है, उसी प्रकार रत्नसेन पद्मावती का ऋण बंधी संबंध हो गया। चकवा चकवी। यह एक परंपरागत प्रसिद्धि है कि चकवा और चकवी रात्रि में एक दूसरे से वियुक्त हो जाते हैं। 2। हिंदी सूफी कवियों ने इसी प्रसिद्धि के आधार पर पंक्तियां लिखी हैं। कुछ उदाहरण, चकई चकवा केली कराही निसी के निछोह दिनही मिली जाही। 3। चकई बिछुरी पुकारे कहाँ मिलो हो नाथ एक चांद निसी सरगमह दिन दूसर जल माह। 4। 1। पद्मावत संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1963 ईस्वी पृष्ठ 85। 2। श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह के मतानुसार चक्रवाक संबंधी इस धारणा को कि रात में नर और मादा अलग अलग हो जाते हैं तथा एक दूसरे का आह्वान करते करते रात बिताते हैं कई लोगों ने गलत बतलाया है, पर यह धारणा वास्तविक है। श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह भारत के पक्षी दिल्ली जुलाई 1958 पृष्ठ 185। 3। जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 13। 4। वही पृष्ठ 24। पद्मावती के मुख चंद्र के कारण दिन को भी रात हो जाती है और चकवा चकवी इसी भ्रम में एक दूसरे से वियुक्त हो जाते हैं। पृष्ठ संख्या 718। कुंवर नाऊ कामिनी सुनी कांपा सुनत बिरह सब गात बियापा मधु मालती कर सुनत मेरावा जानहु मुए पिंड जीव आवा कै जनु पाओ पियासे पानी कै जनु चकई ही रैनी बिहानी। 1। चकोर चांद। प्रसिद्धि है कि आकाश में जब चांद उगाता है और उसकी धवल किरणें धरातल पर विकीर्ण हो जाती हैं, तो यह निर्निमेष नेत्रों से देर तक उसकी ओर सहर्ष देखता रहता है, मानो उसकी चंद्रिका का पान कर रहा हो। हिंदी सूफी कवियों ने चकोर और चांद के प्रेम की चर्चा की है। कुछ उदाहरण, क ज्यों शशि देखी कुमुद बिगसाई पावस चंद चकोर मिलाई। 2। ख छपी गए दिनही भानु कै दशा लेई निसी नखत चांद पर गसा भूली चकोर दिउ मुख लावा मेघ घटा मह चंद दिखावा। 3। ग सूरज पुरुष दरस कै ताई चितवे चंद चकोर कै नाई। 4। घ पाति लीन लेई शीश चढ़ावा दीठ चकोर चंद जस पावा। 5। अंग नौ सत साजे बाला निभरब सेज सुख सोव दुई चकु कुंवर चकोर ज्यों चंद्र बदनी मुख जोव। 6। च हरखित कुंवर पंच सुनी बैना जिमी रे चकोर देखी नैना। 7। 14 खंड 7 भवन लोक इस प्रकार हैं, भू भुव स्व मह जन तप सत्य। इन्हीं में सप्तद्वीप अर्थात जम्बू शाक कुश क्रौच शाल्मक भेद पुष्कर का योग करने से भुवन 14 होते हैं। 1। मंझन कृत मधुमालती संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1961 ईस्वी पृष्ठ 237। 2। कुतुबन कृत मृगावती प्रयाग शक 1885 पृष्ठ 79। 3। जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 24। 4। वही पृष्ठ 77। 5 वही पृष्ठ 101 6 मंजन कृत मधुमालती इलाहाबाद सन 1961 पृष्ठ 155 7 वही पृष्ठ 318 पृष्ठ संख्या 719 जायसी ने 14 भुवन मानते हुए लिखा है कि इन्हें सी भुवन 14 खंडा 1 तथा तीन लोक 14 खंड सबै परै मोहि सूझी पैम छाणी नहीं लीन कछु जो देखा मन बूझी 2 14 विद्या कवि समय के अनुसार विद्याओं की संख्या 14 है। श्री वासुदेव शरण अग्रवाल के शब्दों में 4 वेद 6 वेदांग पुराण मीमांसा न्याय और धर्मशास्त्र इन 14 की गिनती चतुर्दश विद्याओं में की जाती थी। पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदास्थ नानी विद्यानाम धर्मस्य च चतुर्दशः 3 उदाहरण क 14 विद्या भोज निदाना बर रुचि एक अधिक यह जाना 4 ख चारि मीत कवि मुहम्मद पाए जोरी मिताए सिर पहुँचाए चारियु चतुर्दशा गुण पढ़े और संजोग गोसाई गढ़े 5 ग वेद भेद जस बर रुचि चित चेता तस चेत राजा भोज चतुर्दश भा चेतन सौ हेत 6 घ शेख मुहम्मद पीरु अपारा सात समुंद नाउ कंडहारा ज्ञान छाड़ी मुख और न बाता दस और चारी मंत सिद्धि दाता 7 1 जैसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 1 2 वही पृष्ठ 39 3 पद्मावत संपादक श्री वासुदेव शरण अग्रवाल चिरगांव संवत 2012 विक्रम पृष्ठ 460 टिप्पणी 9 4 कुतुबन कृत मृगावती संपादक डॉ. शिव गोपाल मिश्र प्रयाग शक 1885 पृष्ठ 154 5 जैसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 8 6 वही पृष्ठ 199 7 मंजन कृत मधुमालती संपादक डॉ. माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1961 ईस्वी पृष्ठ 14 पृष्ठ संख्या 720 अंग अब सुनो खिजर खान सिरदानी रण अमित बुद्धिवंत ज्ञानी रण स्वरूप और सूरा खट रस विद्या जाना दानी खरग सत साहस दस और चारि निधाना 1 च तौ लही कुंवर गुण विद्या साधी जौ लही गांठी बारही बांधी रण सूरा विद्या गुण पूरा दस और चारि निधान भाग्यवंत बुद्धिवंता मदन सुरति गुण ज्ञान 2 डोम या चांडाल प्रसिद्धि है कि सूर्य चंद्र डोमों या चांडालों के ऋणी हैं। इसी से ग्रहण द्वारा बार बार सताए जाते हैं। सुरुज अस सेवक ताकर अहे आठौ पहर फिरत जो रहे आयसु लिए राति दान धावे सरग पताल दुवौ फिरी आवे दगधि आगि मह होई अंगारा तेहि के आँच धिकै संसारा सो अस बपुरे गहने लीन्हा और धारी बांधी चंडोले दीन्हा 3 दिक्शूल कुछ विशिष्ट दिनों में कुछ विशिष्ट दिशाओं की यात्रा का निषेध है। दिशा विशेष में जाने के निषिद्ध दिन शनि और सोमवार पूर्व का बृहस्पतिवार दक्षिण का रवि और शुक्रवार पश्चिम का तथा मंगल और बुध उत्तर का दिक्शूल है। ऐसा फलित ज्योतिष के अनुसार भारतीय साहित्य में प्रसिद्ध है। 1 मंजन कृत मधुमालती संपादक डॉ. माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1961 ईस्वी पृष्ठ 20 2 मंजन कृत मधुमालती संपादक डॉ. माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1961 ईस्वी पृष्ठ 48 3 जायसी ग्रंथावली आखिरी कलाम पृष्ठ 340 पृष्ठ संख्या 721 कवि जायसी लिखते हैं अदित्य सूक पच्छिउ दिशि राहु बीफे दक्षिण लंक दिशि दाहु सोम सनीचर पूर्व न चालू मंगल बुध उत्तर दिशि कालू 1 पपीहा चातक 2 प्रसिद्धि है कि स्वाति बूंद के बिना पपीहे की प्यास नहीं बुझती। वह स्वाति घन की प्रत्याशा में आकाश की ओर आंखें लगाए रहता है तथा बादल को देखते ही उससे जल दान की याचना करने लगता है। उदाहरण 1 जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 168 2 पपीहे की एक जाति ऐसी है जो साधारण पपीहे से भिन्न है, इसे चातक कहते हैं। हालांकि संस्कृत तथा हिंदी भाषा के साहित्यों में चातक शब्द का प्रयोग समस्त पपीहा जाति के लिए किया गया है, पर पक्षी शास्त्र के पंडितों ने चातक से काली जाति के पपीहा का अर्थ माना है। कद में यह उक्त पपीहे के बराबर ही होता है, पर इसके पर बुलबुल की तरह एक तुर्रा होता है। इसका रंग बिल्कुल काला होता है, जिसमें काफी चमक होती है। इसकी आदत भूरे पपीहे से कुछ भिन्न होती है। भूरा पपीहा बसंत काल से ही बोलने लगता है, चातक वर्षारंभ से। पपीहे की तरह वह पत्तों की ओट से नहीं गाता, बल्कि अंतरिक्ष में उड़ता हुआ काफी दूर चला जाता है, मानो बादलों के आलिंगनार्थ, और फिर वहां से एक प्रकार की बोली बोलता है, जिसके संबंध में बंगला भाषियों का कहना है कि वह बादल से फटिक जल कह कहकर जल की भिक्षा मांगता है। पता नहीं चातक रट ही तृषा अति ओही से गोस्वामी तुलसीदास का आशय भूरे पपीहे से है कि इस चातक से। संभव है दोनों से ही हो, क्योंकि वर्षारंभ पर दोनों ही घन से जल को याचना करने लगते हैं। राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह, भारत के पक्षी, दिल्ली, सन 1958 ईस्वी, पृष्ठ 47, पृष्ठ संख्या 722। क चात्रिग और पानी नहीं पियई, बूंद सेवाती पावे तो जियई। एक ख नैन लाग तेहि मारग, पद्मावती जेहि दीप, जैस सोवातिहि सेवे, बन चातक जल सीप। दो ग जस चातक मुख बूंद सेवाती, राजा चख जोहत तेहि भांति। तीन घ कंवर नाहु कामिनी सुनि कापा, सुनत बिरह सब गात बियापा, मधुमालती कर सुनत मेरावा, जानहु मुए पिंड जीव आवा। कै जनु पाउ पियासे पानी, कै जनु चकही रैनी बिहानी, कै जनु मधुमालती रस बासा, कै जनु अम्बुज सूर परगासा, कै जनु पपिहा धार सेवाती, कै जनु कुमुदिनी ससी रंग राती। चार यह भी प्रसिद्धि है कि पपीहे की रट। पांच विरही जनों, विशेषकर विरह विकल वनिताओं के लिए बड़ी कष्टदायक सिद्ध होती है। उदाहरण दादुर मोर कोकिला पियु, करही बेज घट रहे न जियु। छे एक कुतुबन कृत मृगावती, संपादक डॉ. शिव गोपाल मिश्र प्रयाग, शक 1885 पृष्ठ 130। दो जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 58। तीन जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 128। चार मंजन कृत मधुमालती, संपादक डॉ. माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद, सन 1961 ईस्वी पृष्ठ 237। पांच पपीहे की रट के संबंध में जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी कहा जा सकता है। कोई तो इसकी वाणी में पी कहाँ का आभास पाते हैं, कोई पिया पिया का, कोई पीऊ पीऊ का, तो कोई पी पी हो का। महाराष्ट्र वालों का कहना है कि यह पाउस आला पावस आता है कह कहकर वर्षारंभ की सूचना देता है। राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह, भारत के पक्षी, दिल्ली, सन 1958 ईस्वी पृष्ठ 46। छे पद्मावत, संपादक डॉ. माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद, सन 1963 ईस्वी पृष्ठ 293, पृष्ठ संख्या 723। पारस एक काल्पनिक पत्थर है, जिसके संबंध में प्रसिद्धि है कि उसके स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है। उदाहरण क ए जगसूर कहो तुम पाहा, और पांच नग चितौर माहा, एक हंस है पंखी अमोला, मोती चुने पदारथ बोला, दूसर नग जो अमृत बसा, सो विष हरे नाग कर डासा, तीसर पाहन परस एक परवाना, लोह छुए होई कंचन बाना। दो ख जस पारस के परसत, भीन हेम होई जाई, तिमी मैं शेख मोहम्मद, देखे बिनु साहस सिधि पाई। तीन इस प्रकार जायसी ने पारस के रूप में पद्मावती की कल्पना की है। वे कहते हैं ग कहा मानसर चाह सुपाई, पारस रूप यहाँ लगी आई, भा निर्मल तिन पायन परसे, पावा रूप रूप के दर से। चार पुत्र वियोग मात्र पितृ भक्त श्रवण कुमार, अंधी अंधा दशरथ। प्रसिद्धि है कि मात्र पितृ भक्त श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को एक कांवर बहंगी में बैठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया करता था। राजा दशरथ ने शिकार के भ्रम में उसे मार दिया। इस पर अंधे माता पिता ने राजा को श्राप दिया और तदनंतर दोनों मर गए। एक परस पारस। दो जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 216। तीन मंजन कृत मधुमालती, संपादक डॉ. माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद, सन 1961 ईस्वी पृष्ठ 15। चार जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 25। श्राप यह था जिस पृष्ठ संख्या 724। प्रकार, हम लोग पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, तुम्हें भी पुत्र वियोग में मरना पड़ेगा। एक उदाहरण क, निकसी कुंवर जोगी मिस चला, राजा सुना आगि उर जला, सुत वियोग जसरथ जस कीन्हा, ये हौ चाहि तखन जीव दीन्हा, जसरे अर्जुन अहि वर्ण के मारे, तस बहु राजा रोवे पुकारे, सिर धुनि धुनि कर मलई, आव घटई बिन को न मरई, पाछौ कोई न देखे आगे, मरे न जाई जिये के ही लागे, जस अंधी अंधा सर्वन बिनु, फिकरी मुए चित लाई, मुयेहु पाछु पछिताव न जाई ही, जो नहीं जियत मिलाई। दो ख, रतन सेन के माई सुरसती, गोपी चंद जसी मैनावती, आंधरी बूढ़ी होई दुख रोवा, जीवन रतन कहाँ दहुं खोवा, नैन दीठ नहीं दिया बराही, घर अंधियार पूत जौ नाही, कोरे चले सर्वन के ठाऊं, टेक देह और टेके पाऊं, तुम सर्वन होई कांवरी सजा, डार लाई अब काहे तजा। एक पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है यह कथा वाल्मीकि रामायण में दशरथ ने अपने मरने से पहले कौशल्या से कही है। दशरथ का नाम न देकर यही कथा बौद्धों के साम जातक में भी आई है, पर उसमें अंधे मुनि बुद्ध के पूर्ण उपासक कहे गए हैं और उनके जी उठने की बात है। रामायण में श्रवण कुमार शब्द नहीं आया है, केवल मुनि पुत्र लिखा है, पर इस कथा का प्रचार बौद्धों में अधिक हुआ, इसी से यह सर्वन अर्थात श्रवण बौद्ध भिक्षु की कथा के नाम से ही देश में प्रसिद्ध है। जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 160 टिप्पणी 4। दो कुतबंध कृत मृगावती संपादक डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र प्रयाग शक 1885 पृष्ठ 88-89 पृष्ठ संख्या 725। सर्वन सर्वन ररि मुई, माता कांवरी लागी, तुम बिनु पानी न पावे, दशरथ लावे आगी। एक ग, देखेऊ तोरे मंदिर घमोई, मा तू तोरी आंधरी भय रोई, जस सर्वन बिनु अंधी अंधा, तस ररि मोरी मुई ताही चित बंधा, कहेसी मरो को कांवरी लेई, पूत नाही पानी को देई, गई प्यास लागी तही साथा, पानी दीन दशरथ के हाथा, पानी न पिए आगी पैचाहा, तो ही अस सुत जन्मे असलाहा। दो घ, जो मैं यह कली परिहरी जाऊं, तो ही सेऊ जियत रह जगनाऊं, सुत वियोग जसरथ कह नाई, हम फुनि मरब पूत तुम ताई। तीन बलि की दानशीलता। दैत्य जाति का एक प्रसिद्ध दानी राजा जो विरोचन का पुत्र और प्रहलाद का पौत्र था। चार दानशीलता में अपने को बलिदान कर देने के कारण उसका नाम बलि है। धर्मात्मा और दानी होने के कारण बलि देवताओं पर भी शासन करता था। देवों की माता अदिति को यह बात खली कि उसकी बहन दिति का वंशज उसके पुत्रों पर राज्य करे। उसने अपने पति कश्यप से कहकर एक अनुष्ठान किया जिससे भगवान विष्णु वामन रूप में उसके गर्भ से पैदा हुए। माता के कहने से ये ब्राह्मण रूप में बलि के पास गए। बलि के पूछने पर उन्होंने 3 पग भूमि की याचना की। पहले तो बलि ने कुछ और भी मांगने को कहा, परंतु जब वामन ने कुछ और न मांगा। एक जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 160। लोक कथा के अनुसार सर्वन कांवर को पेड़ की डाल पर टांग गया था। दो वही पृष्ठ 162-63। तीन मंजन कृत मधुमालती संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1961 ईस्वी पृष्ठ 144। चार श्री भोलानाथ तिवारी हिंदी साहित्य की अंतरकथाएं इलाहाबाद सन 1953 ईस्वी पृष्ठ 104। तो बलि ने केवल पृष्ठ संख्या 726 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। संकल्प के पूर्व उनके गुरु शुक्र ने मना किया क्योंकि वे रहस्य समझ गए थे, परंतु बलि ने बात नहीं मानी। जब भूमि देने का प्रश्न आया तो वामन ने अपना विराट रूप धारण किया और 2 पग में सारी पृथ्वी नाप दी। यह देख 3रे पग के लिए बलि ने अपना शरीर अर्पित कर दिया। इस पर वामन उनसे बहुत प्रसन्न हुए। हिंदी सूफी कवियों ने बलि की दानशीलता का उल्लेख किया है। कुछ उदाहरण क, दान देय बहु गणत न आवे, बलि अकरण न सरबरी पावे। एक ख, बलि विक्रम दानी बड़ कहे, हातिम करण त्यागी अहे, सेर साहि सरी पूज न कोउ, समुद्र सुमेर भंडारी दो। दो ग, दान निसार सरग गय बाजे, हेतिम करण भोज बलि लाजे। तीन भर्तृहरि की विरक्ति। वे उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के छोटे भाई थे। वे अपनी रानी पिंगला के कारण वैरागी हो गए थे। इस संबंध में प्रसिद्धि है कि एक बार किसी ब्राह्मण ने उनको एक फल दिया जो अमर करने वाला था। उन्होंने स्वयं न खाकर प्रेमवश वह फल अपनी स्त्री को दिया। स्त्री किसी दरबारी से फंसी हुई थी, उसने वह फल उसे दिया और दरबारी से वह फल एक वेश्या को मिला। अंत में इसी प्रकार चक्कर काटते वही फल एक अहिरिन के पास पहुंचा और उसने इसका उचित उपभोगी भर्तृहरि को जानकर उन्हें दिया। एक कुतबंध कृत मृगावती, संपादक डॉ. शिव गोपाल मिश्र, प्रयाग, शक 1885, पृष्ठ 68। दो जायसी ग्रंथावली, पद्मावत, पृष्ठ 7। तीन मंजन कृत मधुमालती, संपादक डॉ. माता प्रसाद गुप्त, इलाहाबाद, सन 1961, पृष्ठ 12। फल का पृष्ठ संख्या 727। यह घूमना विभिन्न पुस्तकों में विभिन्न प्रकार से मिलता है। एक इससे भर्तृहरि को यथार्थता का पता चला और वे विरक्त हो गए। हिंदी सूफी कवियों को भर्तृहरि की विरक्ति का वर्णन बहुत प्रिय है। कुछ उदाहरण देखिए। क जस भर्तृहरि भय पथ जोगी, रस पिंगला वियोग, रोवे लंक दुहु कर टेके, कहे कौ पंथ जोग। दो ख राजा भर्तृहरि सुना जो ज्ञानी, जही के घर सोरह सहरानी, कुछ लीन्हे तरवा सहराई, भा जोगी को संग न लाई। तीन भृंगी प्रसिद्धि है कि भृंगी फतिंगों को अपने रूप का कर लेती है। चार मलिक मोहम्मद जैसी इस कवि प्रसिद्धि को अपनाते हुए लिखते हैं। क गुरु बिरह चिनगी जो मेला, जो सुलगाए ले सो चेला, अब करी फनिग भृंग कै करा, और हो हूँ जे कारण जरा। पाँच एक श्री भोलानाथ तिवारी, हिंदी साहित्य की अंतरकथाएं, इलाहाबाद, सन 1953 ईस्वी, पृष्ठ 107। दो कुतबंध कृत मृगावती, संपादक डॉ. शिव गोपाल मिश्र, प्रयाग, शक 1885, पृष्ठ 88। तीन जायसी ग्रंथावली, पद्मावत, पृष्ठ 55। चार मादा भृंगी पतिंगे को डंक मारकर मूर्छित कर देती है और उसी के शरीर पर अपने अंडे देती है। कुछ समय बाद बच्चे निकलकर उस कीड़े के शरीर को खाकर बढ़ते रहते हैं और उसकी ठठरी छोड़कर उड़ जाते हैं। इसी आधार पर यह लोक धारणा बनी कि वह मूर्छित कीड़ा ही स्वयं भृंगी रूप हो जाता है। जब कोई किसी के ध्यान में तन्मय हो जाए और अपने आप को सर्वात्मना उसमें लीन कर दे तो उसकी उपमा भृंगी कीट से दी जाती है। शिरेफ कृत टिप्पणी, अंग्रेजी, पद्मावत, 9-5, पृष्ठ 68। श्री वासुदेव शरण अग्रवाल, पद्मावत, चिरगांव, संवत 2012, विक्रम, पृष्ठ 121। पाँच जायसी ग्रंथावली, पद्मावत, पृष्ठ 51, पृष्ठ संख्या 728। ख शबद एक उन्ह कहा अकेला, गुरु जल भिंग फनिंग जस चेला, भिंगी ओहि पाखी पहले ही, एक ही बार छीनी जीव देही। एक वेदांतियों को उक्त प्रसिद्धि बहुत प्रिय है। भोज की विद्वता एवं वीरता, इस नाम के कई राजे अत्यंत प्रसिद्ध हो गए हैं। उनमें मालवा के परमार वंशीय राजा भोज अधिक प्रसिद्ध हैं। उनकी राजधानी धारा नगरी थी और उन्होंने सन 1018 से 1063 ईस्वी तक राज्य किया। दो वे बड़े वीर, विद्या प्रेमी और संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे। प्रसिद्धि है कि वे 14 विद्याओं 3 के ज्ञाता थे, यथा क 14 विद्या भोज निदाना, वर रुचि एक अधिक जाना। चार एक जैसी ग्रंथावली, पद्मावत, पृष्ठ 79। दो क स्वर्गीय पांडे और डॉक्टर नानू राम व्यास, संस्कृत साहित्य की रूपरेखा, कानपुर, सन 1354 ईस्वी, पृष्ठ 350। ख पंडित रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का आदिकाल राजा भोज के समय से मानते हैं। वे लिखते हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, काशी नागरी पिचारणी सभा, काशी, संवत 2003, विक्रम, पृष्ठ 3। तीन चार वेद, 6 वेदांग, पुराण, मीमांसा, न्याय और धर्मशास्त्र, इन 14 की गिनती चतुर्दश विद्याओं में की जाती थी। पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्रांग मिश्रिता, वेदास्थाननी विद्यानाम, धर्मस्य च चतुर्दश। पद्मावत, संपादक श्री वासुदेव शरण अग्रवाल, चिरगांव, संवत 2012, विक्रम, पृष्ठ 460, टिप्पणी 9। चार कुतवन कृत मृगावती, संपादक डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र, प्रयाग, शक 1885, पृष्ठ 154, पृष्ठ संख्या 729। ख वेद भेद जस बर रुचि, चित चेता तस चेत, राजा भोज चतुर्दश भा चेतन सौहेत। एक, यह भी प्रसिद्धि है कि राजा भोज अत्यधिक दानवीर थे। दो, कवि मंचन मधुमालती में लिखते हैं, के ही मुख कहो दान कै बाता, रायहिन पाट मधुक कर दाता, जब वोह दान कर बार उबारे, करन आई तह हाथ पैसारे, दान निशाने सरग गए बाजे, हेतिम करन भोज बलि लाजे। तीन, आगे कवि मंजन राजा भोज के गुणवान एवं विद्वान होने की ओर संकेत करते हुए कहता है, गुण विद्या सरी भोज न पावा, साको विक्रम जाई न लावा। चार, भ्रमर और केतकी। कवि समय के अनुसार भौरे केतकी के कांटों में फंस जाते हैं। उदाहरण क, हिया थार कुछ कंचन लारू, कनक कचोर उठे जनुचारु, बेधे भौर कंट केतकी, चाह ही बेद कीन कंचुकी। पाँच, ख फूल फूल फिर पूछो, जौ पहुँचो ओही केत, तन नेव छावरी कै मिलो, ज्यो मधुकर जीव देत। छ, एक, जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 199। दो, श्रीयुत विश्वेश्वर नाथ रेऊ राजा भोज इलाहाबाद सन 1932 ईस्वी पृष्ठ 104। तीन, मंजन कृत मधुमालती संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1961 ईस्वी पृष्ठ 12। चार, वही 12। पाँच, जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 46। छ, वही पृष्ठ 51, पृष्ठ संख्या 730। ग, तिरिया काट केतुकी, भौर ओहट हुत बार, प्रगट स्वरूप देख जनी, भूल ही होई ही अंत बेकार। एक, घ रूप बास भा केतकी केवा, प्रेम भौर भा जीव पर छेवा। दो, मत्स्य भगवान विष्णु का प्रथम अवतार। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब त्रैलोक जलमग्न हुआ, तब महासमुद्र में सोए हुए ब्रह्मा के मुंह से चार वेदों की उत्पत्ति हुई। उन्हें हयग्रीव ने चुरा लिया। उन्हीं के उद्धार के लिए विष्णु ने मत्स्य रूप में अवतार लिया। तीन, भागवत में इसकी विस्तृत कथा दी हुई है। इसकी ओर संकेत करते हुए कवि जायसी लिखते हैं, सप्त पतार खोज कै काढ़ो वेद ग्रंथ, सात सरग चढ़ी धावो पद्मावती जही पंथ। चार, मनु शत्रुपा। एक मत के आधार पर कवि प्रसिद्धि है कि ब्रह्मा ने अपने शरीर को दो भागों में बांटा। बटे हुए भागों में दायां तो मनु और बायां शत्रुपा हुआ, फिर इन्हीं दोनों से सृष्टि चली। पाँच, एक, मंजन कृत मधुमालती संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1961 ईस्वी पृष्ठ 135। दो, कवि उस्मान चित्रावली काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी 30। चार, तीन, मत्स्य का आकार बड़ा विचित्र था। ऊपर का अंग मनुष्य का था और नीचे का अंग रोहू मछली का। इसके सिर पर सींग, चार हाथ तथा छाती पर लक्ष्मी चिन्ह आदि थे। इनका रंग कृष्ण था। इसके सारे शरीर पर कमल बने थे। श्री भोलानाथ तिवारी हिंदी साहित्य की अंतर कथाएं इलाहाबाद सन 1953 ईस्वी पृष्ठ 115। चार, जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 62। पाँच, प्रसाद जी ने कामायनी पुस्तक में श्रद्धा को मनु की पत्नी माना है, परंतु विष्णु पुराण के अनुसार शत्रुपा इनकी पत्नी थी और मनु शत्रुपा ही से सृष्टि चली। यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों ने यही स्थान आदम और हव्वा का है। पृष्ठ संख्या 731। कवि मंजन इस कवि समय का उपयोग करते हुए लिखते हैं, बाएं अंग तिरिया अवतारु, संतत बाएं जानु कुमारु। एक, फारसी सूफी कवि इस्लाम धर्म के विश्वास के अनुसार हवा का जन्म हजरत आदम की बाई पसली से मानते हैं। ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार इस कवि प्रसिद्धि का व्यवहार इस प्रकार करते हैं, जन न दीदी तू कि अज आदम बजाद। दो, अर्थात क्या तूने नहीं सुना कि आदम से हवा का जन्म हुआ। मृग और अग्नि। प्रसिद्धि है कि मृग अंधकार में अग्नि को देख कर मोहित हो जाता है। तीन, कवि जैसी इस प्रसिद्धि का उपयोग करते हुए लिखते हैं, एक स्वरूप और सुंदरी सारी, जानहु दिया सकल महिबारी, मुरुचि परे जोई मुख जो है, जानहु मृग दिया रही मोह है। चार, मृग और वीणा। प्रसिद्धि है कि मृग वीणा के स्वर पर मोहित हो जाता है, वसुत बुद्ध भूल जाता है। इस प्रसिद्धि के आधार पर कवि जैसी लिखते हैं, पुनि सिंगार हाट भल देसा, किए सिंगार बैठी तह बेसा, मुख तमोल तन चीर कुसुम्भी, कानन कनक जड़ाऊ खुम्भी, हाथ बीन सुनि मृग भुलाही, नर मोहि सुनि पैग न जाही। 5.1 मंजन कृत मधुमालती, संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, इलाहाबाद, सन 1961 ईस्वी, पृष्ठ 137। 2 ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार, मंत्री कुत्तर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, पृष्ठ 240। 3 मध्य युग में मृगों को पकड़ने का एक उपाय यह भी किया जाता था कि अंधेरे में दीपक जलाकर उन्हें आकृष्ट किया जाता था। पद्मावत, संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, इलाहाबाद, सन 1963 ईस्वी, पृष्ठ 165। टिप्पणी 7। 4 जैसी ग्रंथावली, पद्मावत, पृष्ठ 82। 5 वही पृष्ठ 14, पृष्ठ संख्या 732। मोती, प्रसिद्धि है कि स्वाति बूंद सीप में मोती बन जाती है। उदाहरण क, तन सुना जो परिचय सेवाती, एक एक बूंद अमीय कह जाती, जैसे संगरे हाय गुण सोई, सांप के मुखरे परत बिख होई, उहे बूंद सीप गज मोती, निर्मल होए अधिक तेहि ज्योति। 1 ख, जोगिन बहुरे बहुते छंद ओराही, बूंद सेवाती ही जैस पराही, परे समुद्र खार जल ओही, परे सीप मुह मोती होही। 2 ग, पीउ पीउ करत जीव धनि सुखी, बोली चात्रिक भांति, परी सो बूंद सीप जनु मोती, हिये परी सुख साती। 3 युधिष्ठिर, पांडवों में सबसे बड़े आप ही थे। इनके विषय में प्रसिद्धि है कि ये कभी झूठ नहीं बोलते थे तथा बड़े न्यायप्रिय एवं शांत प्रकृति के थे। ये धर्म का पालन करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। हिंदी सूफी कवि कुतुबंद तत्कालीन बादशाह हुसैन के विषय में लिखते हैं, साह हुसैन आह बड़ राजा, छत्र सिंहासन उनको छाजा, पंडित और बुद्धिवंत सयाना, पढ़े पुराण अर्थ सब जाना, धर्म दुधिष्ठिर उन कह छाजा, हम सिर छाऊं जीव जग राजा। 5.1 कुतुबंद कृत मृगावती, संपादक डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र, प्रयाग, शक 1885, पृष्ठ 148। 2 पद्मावत, संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, इलाहाबाद, सन 1963 ईस्वी, पृष्ठ 263। 3 वही पृष्ठ 270। 4 युधिष्ठिर। 5 कुतुबंद कृत मृगावती, संपादक डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र, प्रयाग, शक 1885, पृष्ठ 68, पृष्ठ संख्या 733। इसी प्रकार सूफी कवि मंझन समकालीन शासक सलीम शाह के संबंध में कहते हैं, नौ खंड पृथ्वी भयो आनंदु, धर्म दुधिष्ठिर संत हरिचंदु। 1 तथा सत हरिचंद दान बलि करा, धर्म दुधिष्ठिर कलि अवतारा। 2 1 मंझन कृत मधुमालती, संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, इलाहाबाद, सन 1961 ईस्वी, पृष्ठ 11। 2 वही पृष्ठ 12 राजा विक्रम अथवा शकबंधी। 3 विक्रम, राजा विक्रम का नाम भारतीय साहित्य में वीरता और शक संवत चलाने के लिए प्रसिद्ध है। हिंदी सूफी कवियों ने राजा विक्रम की वीरता और उनके शक संवत चलाने का उल्लेख किया है। उदाहरण क, कहां सो विक्रम है शकबंधी, अर्जुन जिन्हें बनवारी संधि, कहां सो असबी सती सीता, कहां द्रौपदी पाचहुं सरता। 4 ख, तू राजा जस विक्रम आदि, तू हरिचंद बैन सतवादी। 5 ग, विक्रम सरिस कीन जई साका, सिंघल दीप लीन जो ताका। 6 3 साका बांधने वाला, शक संवत चलाने वाला। 4 कुतुबंद कृत मृगावती, संपादक डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र, प्रयाग, पृष्ठ 198। 5 जायसी ग्रंथावली, पद्मावत, पृष्ठ 68। 6 वही पृष्ठ 219।